छोड़ दो उसे। अरमान बड़ी ही खामोशी से कार चला रहा था और आस्था हल्का सा घबराते हुए उसकी ओर टकटकी लगाए देख रही थी। अब आगे वहीं अरमान ने बीच में केवल एक नज़र भर आस्था को देखा था। उसके बाद उसने अपना पूरा ध्यान कार चलाने पर लगा दिया था। आस्था को ये रास्ता भी बड़ा ही जाना पहचाना सा लग रहा था, इसलिए आस्था ने थोड़ी सी हिम्मत जुटाकर अरमान से पूछा, मिस्टर सिंघानिया, आखिर आप मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं? लेकिन अरमान ने आस्था की बात का कोई जवाब नहीं दिया। आस्था के मन में सवालों का तूफान उठने लगा था। आखिर ये क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? चलो, हम मानते हैं कि ये हमारी बेवकूफ़ी थी कि हमने नशे की हालत में इनके सामने सब कुछ उगल दिया, और शायद इसी वजह से इन्होंने रॉकी का काम तमाम कर दिया। लेकिन अब जब इन्हें ब्लैक डेविल के बारे में सब कुछ पता चल चुका है, तो ये ऐसे रिएक्ट क्यों कर रहे हैं जैसे इन्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता? लेकिन इससे पहले कि आस्था अरमान से कुछ और पूछ पाती, उससे पहले ही उसे नानी माँ का वॉइस मैसेज मिल चुका था। जैसे ही आस्था ने ब्लूटूथ कनेक्ट करके वो वॉइस मैसेज सुना, तो उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। उसने सीने पर हाथ रखा और गहरी सांस ली। एकदम से उसके माथे से पसीना निकलना शुरू हो गया। अब अरमान ने जैसे ही ये देखा कि आस्था के माथे पर से पसीना निकल रहा है, तब उसने तुरंत कार साइड में रोक दी और उसे पानी की बॉटल देते हुए बोला, पानी पी लो और बताओ क्या बात है। ये सुनकर आस्था ने गहरी सांस ली और बात बदलते हुए बोली, मिस्टर सिंघानिया, पहले आप मुझे ये बताइए कि आप मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं, उसके बाद ही हम आपको बताएंगे कि आखिर बात क्या है। इस पर अरमान ने अपनी आंखें कसकर बंद की, फिर अपनी दो उंगलियां माथे पर लगाकर हल्का हल्का रब करने लगा। अरमान के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर आस्था और ज्यादा घबरा गई और वो अपने होठों को चबाते हुए मन में बोली, आखिर ये मिस्टर सिंघानिया को हो क्या गया है? ये हम पर इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? फिलहाल अरमान ने आस्था से कोई बहस नहीं की, बस कार स्टार्ट की और झुंझलाकर बोला, तुमसे बात करने का कोई फायदा नहीं है, चलो मेरे साथ, हमें देरी हो रही है। इस पर आस्था अनमने तरीके से गहरी सांस लेते हुए खामोश हो गई। कुछ ही देर में अरमान ने अपनी कार अपने फार्म हाउस के सामने रोक दी, जिसे देखकर आस्था एकदम से चौंक गई। और तभी उसे अचानक से याद आया कि अरमान ने उसे थोड़ी देर पहले बताया था कि उसने संजना को फार्म हाउस पर रखा है। तो क्या वो उसे संजना से मिलाने के लिए यहाँ लेकर आया है? आस्था उलझन भरी नजरों से यहाँ वहाँ देखते हुए अरमान के पीछे पीछे अंदर जाने लगी। लेकिन जैसे ही अरमान और आस्था ने फार्म हाउस के अंदर पहला कदम रखा, वैसे ही उन्होंने देखा कि पूरा का पूरा फार्म हाउस तबाह हो चुका था। इतना ही नहीं, अरमान के सिक्योरिटी गार्ड्स चारों तरफ मरे पड़े हुए थे। इतना खतरनाक मंजर देखकर आस्था का दिल जोरों से धड़कने लगा था और डर के मारे उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसने डरते हुए अरमान का हाथ कसकर पकड़ लिया। वहीं अरमान बिल्कुल ठंडी नजरों से चारों तरफ का इधर उधर जायजा लेने लगा। जैसे ही वो दोनों उस कमरे में पहुंचे जहां संजना को कैद करके रखा गया था, वो जगह भी पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी। इसका मतलब साफ था, संजना को वहां से किसी ने छुड़ा लिया था। जब अरमान चारों तरफ इधर उधर देख रहा था, तब आस्था ने मौका पाकर फटाफट एक ग्रुप में मैसेज छोड़ दिया, क्योंकि उसे लगने लगा था कि अगर संजना यहां से गायब है तो जरूर कोई ना कोई दुश्मन यहां आसपास मौजूद हो सकता है, जो शायद छुपकर अरमान पर वार कर सकता है। आस्था को तो केवल ब्लैक डेविल और राजवीर के बारे में ही पता था, लेकिन अरमान के ना जाने और कितने सारे दुश्मन थे, ये बात अरमान सिंघानिया के अलावा और कौन जान सकता था। इसी सोच के चलते आस्था ने फटाफट ग्रुप मैसेज कर दिया। वहीं दूसरी ओर बाकी सब पहले से ही सतर्क बैठे हुए थे। जैसे ही सब लोगों को आस्था का मैसेज मिला, वैसे ही सभी लोग बिना देर किए फटाफट से फार्म हाउस की ओर रवाना हो चुके थे। वहीं आस्था ने अरमान की ओर नजरें घुमाई और असहज होकर पूछा, मिस्टर सिंघानिया, आखिर संजना कहाँ जा सकती है? आस्था को पूरा यकीन था कि ये काम जरूर राजवीर जिंदल का है, लेकिन वो सीधे तरीके से राजवीर का नाम अरमान के सामने नहीं ले सकती थी, क्योंकि वो जानती थी अरमान को भले ही ब्लैक डेविल के बारे में पता चल चुका था, लेकिन राजवीर जिंदल को तो वो अपना गुरु मानता था। अगर उसने राजवीर का नाम उसके सामने लिया तो वो न जाने उसके साथ क्या कांड कर बैठेगा, इसलिए उसने इस मामले में ज्यादा कुछ बोलना जरूरी नहीं समझा। थोड़ी देर बाद देखते देखते सभी लोग वहां पहुंच चुके थे और फार्म हाउस की हालत देखते ही सबकी आंखें हैरत से चौड़ी हो गई थी। सभी को बहुत बड़ा झटका लगा था। वहीं आहान के हाथ से उसका फोन लगभग छूट ही गया था। जैसे ही आस्था ने उन्हें बताया कि संजना को फार्म हाउस में ही कैद करके रखा गया था, तो सब और ज्यादा चौंक गए। अब सबको समझ में आ चुका था कि ये सब किया धरा शायद राजवीर या ब्लैक डेविल का ही हो सकता है। अरमान ने किसी को कुछ नहीं कहा। उसने धुर की और नजरें घुमाई और काफी सख्त लहजे में उससे पूछा, उस एंटीडोट का क्या हुआ? किसने चुराया है एंटीडोट? अरमान के मुंह से ये सवाल सुनते ही धुर के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी थीं। एक पल के लिए वो हैरत में पड़ गया। अगले ही पल वो समझ चुका था कि अरमान को एंटीडोट के बारे में काफी हद तक सब कुछ पता चल चुका है। हालांकि अरमान ने सीधे तौर पर उससे ये नहीं कहा कि वो कितना जानता है, इसलिए ध्रुव ने खर सीधा और सच्चा जवाब दिया, वंशिका के प्रोफेसर मिस्टर प्रशांत जी पर कुछ लोगों ने हमला किया और उन्होंने जो आपके लिए एंटीडोट बनाया था वो लोग उनसे एंटीडोट चुरा कर ले गए। ये सुनकर अरमान ने गहरी नजरों से आस्था की तरफ देखा। फिर अचानक अरमान आस्था के पास आकर उसके बेहद करीब खड़ा हो गया और उसके कानों के पास झुकते हुए वो धीमी आवाज में फुसफुसाया, अगर तुम्हें दोबारा ब्लैक डेविल के डार्क विला में जाकर एंटीडोट लेने के बारे में सोचा भी ना तो मैं तुम्हारा भेजा उड़ा दूंगा और एक बार भी ये नहीं सोचूंगा कि तुम कौन हो, समझी तुम? इसलिए अपनी होशियारी अपने तक ही रखना। इतना कहते ही वो आस्था का हाथ कसकर पकड़ लेता है। उसकी आंखें भले ही डार्क थीं मगर उनमें कुछ इमोशंस नजर आ रहे थे। जैसे ही आस्था की नजर अरमान के खतरनाक एक्सप्रेशंस पर पड़ी तो एक पल के लिए आस्था घबरा गई। अरमान ने फिर अपनी आईब्रो चढ़ाते हुए बारी बारी से सबको घूरते हुए देखा और सीधा जाकर अपनी किंग चेयर पर बैठ गया।
वहां का माहौल कुछ ऐसा लग रहा था मानो अरमान कोई राजा हो और उसके सिपाही उसके सामने सिर झुकाए खड़े हों। वहीं घबराई हुई आस्था उसके बराबर में खड़ी थी। अरमान ने फिर बारी बारी से सबको शांत नजरों से देखा और अचानक वो जोर से हंस पड़ा। चारों तरफ फैली लाशों को देखकर उसका इस तरह हंसना बेहद डरावना सा लग रहा था। अरमान के एक्सप्रेशन देखकर सभी के रोंगटे खड़े हो गए थे और उनका दिल कांप गया। तभी आहान ध्रुफ के कानों में फुसफुसाया, यार अरमान भाई को ये क्या हो गया है? ये इतना ज्यादा डेंजर साउंड क्यों कर रहे हैं? इतने सारे लाशों के बीच इस तरह हंसना कुछ ज्यादा ही भयानक नहीं लग रहा? ये कहते हुए आहान की आवाज अविश्वास और सदमे से भरी हुई थी। आहान के सवाल पर अबीर ने अविनाश की ओर आंखें घुमाई और मजे लेते हुए बोला, अविनाश भाई, इसलिए तो कहते हैं कि अपनी बेटी या बहन की शादी करने से पहले थोड़ी छानबीन कर लेनी चाहिए। चलो, इसमें तुम्हारी गलती भी नहीं है, क्योंकि जब तुम आस्था से मिले तब तक उसकी शादी अरमान से हो चुकी थी। लेकिन अब तुम अपनी बहन की किस्मत बदलने के लिए कुछ कर सकते हो ना? देखो तो जरा किस सन की आदमी के साथ तुम्हारी बहन की शादी हो गई है, जो इस तरह डेंजरस अंदाज में हंस रहा है। अविनाश ने गुस्से से अबीर की तरफ देखा। उसे थोड़ी झुंझलाहट महसूस हुई, लेकिन वो चुप रहा।
वहीं आकाश और सुमित थोड़े आगे बढ़े और अरमान को देखते हुए बोले, अरमान क्या हो गया है तुम्हें? तुम इस तरह क्यों हंस रहे हो? बिहेव योरसेल्फ। हमारा पूरा फार्म हाउस तबाह और बर्बाद हो चुका है, हमारे इतने सारे आदमी मारे जा चुके हैं और तुम यहाँ इस तरह से हंस रहे हो? आखिर तुम ऐसे रिएक्ट कैसे कर सकते हो? बोलो, जवाब दो। आकाश का सवाल सुनते ही अरमान एकदम से उठ खड़ा हुआ। इसी बीच आस्था अरमान ऐसे देखने लगी जैसे वो किसी पागल को देख रही हो। उसे इस तरह हंसते हुए देखकर वो अपने इमोशंस पर काबू नहीं रख पाई। उसने दांत भींचते हुए सांस खींची और फूट फूट कर रोने लगी। जितना भी दर्द उसके दिल में था वो आंसू बनके उसकी आंखों से बहने लगे। आस्था को यूं एकदम से रोते हुए देखकर आकाश, सुमित, अविनाश और अबीर सभी पूरी तरह बेचैन हो उठे। अविनाश की आंखें भर आईं। वो आगे बढ़ा और घुटनों के बल आस्था के पास जाकर बैठा, जो बहुत जोर जोर से रो रही थी। वो उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, क्या बात है गोरी, तुम इस तरह से क्यों रो रही हो? सब ठीक तो है ना गोरी? लेकिन आस्था उस समय अपने जज्बातों पर काबू नहीं रख पाई और अविनाश का हाथ झटकते हुए बोली, क्या ठीक है भैया, क्या ठीक है? कुछ भी तो ठीक नहीं है। हमारे पति हमारी आंखों के सामने पागलपन जैसा बर्ताव कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि सब ठीक है? देखिए ना, इतने सारे लोग यहाँ मरे पड़े हैं, संजना को किसी ने यहाँ से छुड़ा लिया है और ये किस तरह हंस रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे इन्हें किसी चीज़ से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा हो। कहते हुए वो गुस्से में लगभग हाँफ रही थी। फिर वो अपनी बात आगे बढ़ाते हुए बोली, कितनी मुश्किल से ये ठीक हुए थे, कितनी मुश्किल से हमने इन्हें संभाला था, कितनी मुश्किल से इन्हें अपनी ज़िंदगी में वापस लाए थे। इनकी यादें जाते ही सब कुछ फिर से तबाह हो गया। हमारे पति कहीं खो गए हैं। आप नहीं जानते भैया, हमें उनके बिना कैसा महसूस होता है। हम उनके बिना नहीं रह सकते, लेकिन अब इन्हें देखकर हमें डर लगता है, एक अजीब सी घबराहट होती है। आपने इनका बिहेवियर देखा है? अरमान को आस्था की आवाज़ में गुस्सा और बेबसी दोनों सुनाई दिए और उसका मन थोड़ी देर के लिए बेचैन हो गया और वो बहुत ध्यान से रोती हुई आस्था की बातें सुन रहा था। उसका दिल पूरी तरह टुकड़ों में टूट रहा था, लेकिन फिर भी वो अपने चेहरे पर कोई भी इमोशंस आस्था को दिखा नहीं पा रहा था। कुछ तो ऐसा था जो उसे आस्था के करीब जाने से रोक रहा था। वहीं अबीर अब खुद को रोक नहीं पाया और अरमान की तरफ जलती आंखों से घूरते हुए बोला, पागल हो गए हो अरमान सिंघानिया? समझ नहीं आता मैं तुम्हें क्या बोलूं, तुम ऐसा बर्ताव कैसे कर सकते हो? तुम्हें आस्था के सामने ये पागलपन दिखाने की क्या जरूरत है? तुम्हारी बीवी नाजुक है, कमजोर है, वो डर गई है तुमसे। अगर तुमसे अपनी बीवी नहीं संभलती तो छोड़ दो उसे, मैं उससे शादी कर लूंगा, मैं उसे खुश रखूंगा, कम से कम वो इस तरह रोएगी तो नहीं। अबीर के शब्दों में कड़वाहट और दर्द साफ झलक रहा था। अबीर की कड़वी बात सुनते ही अरमान अचानक अपना आपा खो बैठा। उसने झट से अबीर की गर्दन पकड़ ली और उसे दबाने लगा। आकाश, सुमित, ध्रुव और आहान फटाफट हरकत में आए और चारों तरफ से अरमान को पकड़कर उसे छुड़ाने की कोशिश करने लगे। सब उस पर चिल्लाने लगे, अरमान भैया प्लीज छोड़ दीजिए, मिस्टर राठौर की जान चली जाएगी। अविनाश भी आगे बढ़ा और अरमान को कंधे से पकड़कर पीछे खींचने लगा। वहीं आस्था बेजोर जोर से रो रही थी। उसका दिमाग उसके आपे में नहीं था, क्योंकि उसमें अजीब अजीब तरह के ख्याल आ रहे थे। अरमान का ये रूप देखकर वो बहुत ज्यादा डर गई थी। अरमान के कानों में अबीर के वही शब्द बार बार गूंज रहे थे, अगर तुमसे अपनी बीवी नहीं संभलती तो छोड़ दो उसे। अबीर के इस बिहेवियर ने अरमान के गुस्से को और ज्यादा हवा दे दी थी। अबीर की आंखें बाहर आने को तैयार थीं, लेकिन अरमान किसी की बात सुनने को तैयार नहीं था। जैसे ही सबकी घबराई आवाज आस्था के कानों में पड़ी, वैसे ही वो अपने होशो हवास में वापस आई। सामने का नजारा देखते ही वो अपने कानों पर हाथ रखकर जोर से चीख पड़ी, जिसे सुनकर अरमान अगले ही पल अपने होशो हवास में आया और उसने अबीर की गर्दन छोड़ दी। आस्था फिर अरमान पर लगभग बरसते हुए बोली, आप इंसान नहीं हैं, आप एक हैवान बन चुके हैं। हमारे पति हमारी आंखों में दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, आज हमें इस हालत में देखकर भी आप शांत हैं? आप हमारे पति नहीं हो सकते, नहीं हो सकते, मुझे आपसे नफरत है, सिर्फ और सिर्फ नफरत। इतना कहते ही आस्था जोर जोर से रोते हुए वहां से भाग गई
अविनाश भी तुरंत अपनी बहन के पीछे पीछे भागने लगा था। वहीं अबीर गहरी गहरी सांसें ले रहा था। जाने से पहले उसने अरमान को सरकास्टिक नजर से देखा, फिर वो कड़वाहट से मुस्कुराया और बाहर निकल गया। अरमान ने उसे घूरते हुए ठंडी सांस ली और गुस्से में अपनी मुठियां कसकर भींच ली। सुमित अरमान को देखते हुए रूखेपन से बोला, तो आखिर करना क्या चाहता है? हमें लगा था कि तेरी यादें वापस आ गई हैं, या फिर तुझे सारा सच पता चल गया है। लेकिन ये सब क्या तमाशा था अरमान? तू क्यों अपनी और आस्था जिंदगी की मुश्किलों को और बढ़ा रहा है? आकाश और सुमित अपने अपने तरीके से अरमान को समझाने लगे, लेकिन अरमान ने हवा में हाथ आगे बढ़ाकर उन्हें कुछ भी कहने से रोक दिया। बस बहुत हो चुका, अब तुम सब यहां से चले जाओ, मैं कुछ देर अकेला रहना चाहता हूं। इस पर आकाश और सुमित ने सहमति में सिर हिलाया और चुपचाप उसे वहीं छोड़कर चले गए, क्योंकि वे जानते थे कि अगर अरमान चाहता है कि वे वहां से चले जाएं, तो इसका मतलब यही है कि उसे थोड़ा सुकून चाहिए। वहीं सबके जाने के बाद अरमान ने चारों तरफ यहां वहां नजरें दौड़ाईं और अचानक रहस्यमयी ढंग से कमरे के अंदर चला गया।